ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है। विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए के कामकाज को कुशल बनाना है। विधेयक में एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदाओं के आकार और पैमाने में बदलाव हुआ है और प्रतिक्रियाओं को भी उसी अनुसार बदलना होगा।
हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मैनुअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया ऐप और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं।
लोकसभा ने कल वित्त विधेयक 2025 पारित कर दिया। विधेयक में 35 सरकारी संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। विधेयक का उद्देश्य वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में करदाताओं को सम्मान देने और कारोबारी सुगमता के लिए करों में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए आयकर विधेयक पर अगले मानसून सत्र में चर्चा होने की संभावना है। ओडिशा विधानसभा में कल कांग्रेस के 14 विधायकों में से 12 को कथित दुर्व्यवहार और विधानसभा के नियमों के उल्लंघन के मामले में 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य सचेतक सरोज प्रधान द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के सदन में पारित होने के बाद यह निर्णय लिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास बन चुका है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को प्रभावी ढंग से खत्म किया है। गृहमंत्री ने कहा कि हुर्रियत के दो गुटों ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अन्य गुटों से भी अलगाववाद का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ने का आग्रह किया। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को कल नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। झारखंड कैडर के 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 तक 5 साल तक कैबिनेट सचिव रहे। उन्होंने भारत को कोरोना महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार से संबंधित रणनीतियों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णय लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत नियुक्ति के बाद श्री गौबा नीति आयोग के अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के समान सेवाएं देंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत जूली बिशप ने कल म्यांमार के तेजी से बदलते हालात पर चर्चा की। सुश्री बिशप अभी भारत की यात्रा पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पिछले वर्ष अप्रैल में उन्हें म्यांमार के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा तख्तापलट के बाद से वहां लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस वर्ष बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 32% की वृद्धि हुई है। इसमें कुल 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में 17% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राज्य सरकार की प्रमुख महिला समृद्धि योजना के लिए भी 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट 2020 में कल रात पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 11 रन से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 2044 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन ही बना पाई। आज गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।